29 अप्रैल रविवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। दक्षिण कोरिया ने कहा, उत्तर कोरिया अगले महीने अपना प्रमुख परमाणु परीक्षण केंद्र कर देगा बंद। दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी पर गरजे राहुल गांधी, बढ़ाया कार्यकर्ताओं का उत्साह।
ये जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो हर रोज अपना खून पसीना देता है, गर्मी में खड़ा होता है, ये शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा।
गुजरात में 300 से ज्यादा दलितों ने हिंदू धर्म से नाता तोड़ा।
जो भी संस्कृति है वो संस्कृति ऊंच नीच वाली संस्कृति है, असमानता वाली संस्कृति है, तो उसको छोड़ने के लिए अभी लोग तैयार हुए।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, रजनीश कुमार से। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया अगले महीने अपना प्रमुख परमाणु परीक्षण ठिकाना बंद कर देगा। यहीं पर उत्तर कोरिया ने अपने सभी 6 परमाणु विस्फोट किए थे। उत्तर कोरिया ने इस बंदी की सार्वजनिक पुष्टि के लिए विशेषज्ञों और मीडिया को आमंत्रित किया है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने घोषणा की थी कि वह परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण बंद करने की प्रतिबद्धता दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक में जताई थी। अपने पहले मध्य पूर्व दौरे पर पहुंचे अमेरिका के नए विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ईरान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया कि वो अपने इलाके को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब के नेतृत्व से बातचीत करने के बाद पोम्पियो ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो पड़ोसी यमन में हूती विद्रोहियों को हथियार मुहैया करा रहा है। इसके साथ ही पोम्पियो ने खाड़ी के देशों में एकता की भी बात कही। अमरीकी विदेश मंत्री का इशारा सऊदी और कतर के बीच विवाद को लेकर था। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा,
ईरान डिस्टेबलाइजेस दिस एंटायर रीजन, इट सपोर्ट्स प्रॉक्सी मिलिशियस।
ईरान पूरे इलाकों को अस्थिर कर रहा है, वो चरमपंथी संगठनों को मदद पहुंचा रहा है, वो यमन में हूती विद्रोहियों को हथियार मुहैया करा रहा है और साइबर हैकिंग अभियान को भी अंजाम दे रहा है। इस मामले में हम ईरान की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने अपने नागरिकों को कुवैत में जाकर नौकरी करने पर स्थायी पाबंदी लगा दी है। इससे पहले फरवरी महीने में कुवैत में फिलीपींस की एक मेड की हत्या के बाद अस्थायी पाबंदी लगाई गई थी। राष्ट्रपति दुतेर्ते ने कहा कि हालात बहुत बुरे हैं और उन्होंने अपने नागरिकों से वापस घर आने की अपील की है। दोनों देश इस पाबंदी को ख़त्म करने के लिए श्रम समझौते पर बात कर रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते कुवैत ने फिलीपींस के राजदूत को जाने के लिए कह दिया था। कुवैत में फिलीपींस से कम 260,000 लोग काम करते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश स्थित रोहिंग्या मुसलमानों के शरणार्थी कैंपों में रह रहे लोगों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजदूतों से म्यांमार में हत्या और बलात्कार की दिल दहलाने वाली घटनाओं के बारे में बताया है। संयुक्त राष्ट्र की टीम इन कैंपों की स्थिति का जायजा लेने पहुंची है। इस दौरे के बाद रूसी राजदूत ने कहा कि वो इस मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि झटके में समस्या का समाधान कर दे। इस मौके पर साजिदा बेगम नाम की एक रोहिंग्या महिला ने कहा, हम लोग को इंसाफ चाहिए, उन्होंने हमारे आदमियों को मारा है और महिलाओं को प्रताड़ित किया है, हमें इंसाफ चाहिए और इसकी मांग जारी रहेगी। ये थे बांग्लादेश के रोहिंग्या कैंप में रह रही साजिदा बेगम के शब्द। आर्मेनिया में प्रदर्शनकारियों ने सभी बड़ी सड़कों को बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष के नेता की उस अपील पर ऐसा किया है जिसमें उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के आदेशों की अवहेलना करने को कहा है। विपक्ष के नेता निकोल पाशिनयान पिछले हफ्ते से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्मेनिया में मुश्किल से एक साल पहले ही आम चुनाव में निकोल पाशिनयान के गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया में दमकल कर्मियों ने मेलबर्न की एक यूनिवर्सिटी से 500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। यहाँ पर गैस लीक की आशंका जताई जा रही है। इस इलाके में अब भी अजीब गंध आ रही है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और शाम की सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर, फेसबुक पर और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन सकते हैं कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। कांग्रेस के अध्यक्ष मोदी पर गरजे राहुल गांधी, भीड़ काफी उमड़ी, लेकिन क्या दिल्ली के रामलीला मैदान में जो मंजर आज नजर आया, क्या उससे 2019 के चुनाव में बनेगी बात? हम करेंगे इस पर बात, लेकिन पहले शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि अगले महीने उत्तर कोरिया अपने प्रमुख परमाणु परीक्षण स्थल पुंगेरी को बंद कर देगा। इसकी पुष्टि के लिए विशेषज्ञों और मीडिया को भी बाकायदा आमंत्रित किया जाएगा। उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण बंद करने का ऐलान बहुत पहले कर चुका है। हालांकि उत्तर कोरिया ने चीन से आ रही उन खबरों को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि प्रमुख परमाणु परीक्षण स्थल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है, इसकी वजह से वहां पर परीक्षण हो ही नहीं सकते। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए भूमिका राय से।
दक्षिण कोरिया के पनमुनजोम में उत्तर और दक्षिण कोरियाई नेताओं के बीच हुई ऐतिहासिक शिखर वार्ता का जमीन पर असर दिखने लगा है। इस बातचीत के दो दिन बाद दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के कार्यालय ने उत्तर कोरिया की ओर से किए गए एक अहम फैसले की जानकारी दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि उत्तर कोरिया अगले महीने यानी मई में अपने देश के परमाणु परीक्षण के मुख्य जगह पुंगेरी को बंद कर देगा। किम जोंग उन और मून जे इन की शिखर वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करने पर सहमति जाहिर की थी। रविवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के प्रवक्ता यून योंग चान ने बताया,
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि वो मई में देश के उत्तरी हिस्से में स्थित परमाणु परीक्षण साइट को बंद कर देंगे। वो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया से विशेषज्ञों और पत्रकारों को बुलाएंगे।
पुंगेरी देश के उत्तर पूर्व हिस्से में पहाड़ों के बीच स्थित है। इसे उत्तर कोरिया का मुख्य परमाणु केंद्र माना जाता है। इस परमाणु साइट के बारे में ज्यादातर जानकारी सैटेलाइट के जरिए ही जुटाई गई है। साल 2006 के बाद उत्तर कोरिया ने यहाँ 6 यानी अपने सभी परमाणु परीक्षण किए। आखिरी परीक्षण सितंबर 2017 में किया गया था। इसके बाद भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए थे। भूवैज्ञानिकों की राय है कि परीक्षण की वजह से पहाड़ के अंदर के हिस्से को नुकसान हुआ है। हालांकि किम जोंग उन इसे खारिज कर चुके हैं। शिखर वार्ता के दौरान किम जोंग उन ने मून जे इन से ये भी कहा था कि अगर विश्वास बना रहा तो कोरियाई प्रायद्वीप में हथियार रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। दोनों देशों के बीच हुई शिखर वार्ता की उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने भी सराहना की है। मीडिया ने इसे प्रायद्वीप के इतिहास में मील का पत्थर और टर्निंग पॉइंट बताया है। उत्तर कोरिया के मीडिया में प्रसारित खबर में कहा गया,
बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने परस्पर हितों के मुद्दों पर साफगोई और गंभीरता के साथ अपनी बात रखी। इन मुद्दों में उत्तर और दक्षिण कोरिया के रिश्ते सुधारना, कोरियाई प्रायद्वीप में शांति सुनिश्चित करना और प्रायद्वीप को परमाणु हथियार से मुक्त करना शामिल था।
इस बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने ये भी बताया कि उत्तर कोरिया अपने टाइम जोन में बदलाव के लिए भी सहमत हो गया है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के टाइम जोन में आधे घंटे का अंतर है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता चान ने बताया,
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि उनका देश प्योंगयांग के समय के बजाय सियोल के समय को अपनाएगा।
हालांकि टाइम जोन में बदलाव को लेकर उत्तर कोरिया की ओर से कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। उधर शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो उत्तर कोरिया के नेता से अगले 3 से 4 हफ्ते के बीच प्रायद्वीप से परमाणु हथियार हटाने के मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। कोरियाई प्रायद्वीप और दुनिया के तमाम देशों की अगली उत्सुकता इसी मुलाकात को लेकर है।
दक्षिण कोरिया ने कहा, उत्तर कोरिया अगले महीने अपना प्रमुख परमाणु परीक्षण केंद्र बंद कर देगा। ब्यौरा सुना रही थी भूमिका राय।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जमकर गरजे और जमकर बरसे भी। मौका था कांग्रेस की रैली का जिसे जनाक्रोश रैली का नाम दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में बढ़ रही नफरत, बेरोजगारी, हिंसा और महिलाओं की असुरक्षा जैसे हर मुद्दे पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि इस देश को आज बीजेपी की नहीं कांग्रेस की जरूरत है और उनकी पार्टी आने वाले चुनावों में जीत का परचम लहराएगी।
आप देखना क्या करता है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, हर बूथ में खड़ा है, अपनी विचार साझा के लिए खड़ा है और एक साथ मिलकर लड़ रहा है। आप देखना क्या होता है कर्नाटक में, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। और क्यों जीतेगी मैं बताता हूं, क्योंकि ये जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो हर रोज अपना खून पसीना देता है, गर्मी में खड़ा होता है, ये शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा।
तो जैसा कि सुना आपने, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने जोशीले भाषण से कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की है। राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वादे झूठे साबित हुए और उनकी नीतियों से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। कार्यक्रम में आगे हम करेंगे विश्लेषण, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, जिस अंदाज में कहा, लेकिन पहले सुनिए रामलीला मैदान में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या कहना था।
मैं इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूं, जहां पर एक जबरदस्त रैली, पहला प्रदर्शन है ये राहुल गांधी का अध्यक्ष बनने के बाद। जगह जगह से देश के विभिन्न कोनों से कार्यकर्ता यहां जमा हैं।
यूपी मुरादाबाद से आए हैं,
मेरठ,
मेरठ से हैं,
पंजाब से,
पंजाब से।
ये बताइए कि क्या कारण रहा कि बीजेपी आई और कांग्रेस एक एक करके साफ होती चली गई, क्या संगठन में
वो साफ, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन जहां ये जीती वहां भी मोदी ने अपनी सरकार बनाई। ये सवाल का जवाब आप दे दो मेरे, जहां कांग्रेस जीती वहां मोदी की सरकार क्यों बनी? पहला नंबर उसको दिया जाता है जिसकी ज्यादा सीटें होती हैं, और वहां भी त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम, पता नहीं कहां कहां इन लोगों ने उनको हराया, घोषित कर दिया। ये तो एक जबरदस्ती है, एक दादागिरी और एक गुंडागर्दी की बात हो गई।
ये सब
मशीनरी झूठ
कर ली और ईवीएम में घपला करके सरकार बनी है, घोटाले की सरकार है, झूठ पे मबनी है। तमाम वादे मोदी के झूठे थे, जनता ने देख लिया है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, बेटियों की अजमत दरी हो रही है, इज्जत लूटी जा रही है, कोई महिला सेफ नहीं है, जंगल राज है यूपी में, बहुत बुरा हाल है,
नौकरी है ना, लूट ली गई,
कुछ नहीं,
अर्थव्यवस्था खत्म कर दी गई, बर्बाद कर दी गई। राकेश शर्मा मेरठ
जी,
लुधियाने तो
पंजाब में तो कांग्रेस आई पावर में,
पावर है कांग्रेस, मोदी का बुरा, बड़ा बुरा हाल है मोदी।
तो अलग अलग ब्राह्मणों से लोग यहाँ पर आके जमा हैं, पंजाब के लोगों से बात हुई आपकी, हरियाणा के लोगों के बात हुई, पंजाब से और भी हैं साथ में। आपका नाम क्या है?
गुरदेव सिंह लापरा, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लुधियाना।
इतनी बड़ी रैली कांग्रेस की पहले कभी देखी आपने पिछले कई सालों में?
मैंने तो नहीं देखी। इस रैली की सबसे बड़ी विशेषता, राहुल गांधी जी जब से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, उनकी पहली रैली है।
ऑल इंडिया से कांग्रेस जबरदस्त, मैम पंजाब से भी रास्ते सारे ब्लॉक किए हुए हैं, हम 3 घंटे में आए हैं इधर पहुंचे रैली के तरफ, बाईपास है, 3 घंटे, 7 बजे
कुछ 6 बजे पंजाब से तुरे अभी पहुंचे नहीं, कार के तुरे बस लगे,
ट्रेन रोक दी गई है, कांग्रेस के लोगों की भर के आ रहे लोग, और इसमें बीजेपी की सरकार के लोगों ने हमारे वर्करों को भोपाल के अंदर रोक दिया गया, जो कि भारत से बहुत सारे वर्कर आ रहे हैं।
प्रदेश मंत्री
शंखनाद हो गया है, कांग्रेस पार्टी ने शंखनाद कर दिया है, 2019 में हर तरीके से कांग्रेस पार्टी आएगी
की तैयारी के लिए ये रैली बुलाई गई है, और काफी जबरदस्त लोगों का यहाँ जमावड़ा है, अंदर जगह नहीं है लोगों के बैठने की, लोग सड़कों पर फैले हुए हैं। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
तो जैसा कि आपने सुना, सलमान रावी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज रामलीला मैदान से आप तक पहुंचा रहे थे। उससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस अंदाज में जनाक्रोश रैली को संबोधित किया, उसके क्या मायने हैं, कैसे उसे समझा जाए और कैसे व्याख्या की जाए, यही समझने के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती से बात की।
दो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्होंने, एक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पर जोर दिया
राहुल गांधी के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं काफी समय से कि संगठनात्मक इश्यूज से, उन मुद्दों से उनका काफी वास्ता रहता है और वो दोबारा कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं। दूसरे नंबर की बात, जब उन्होंने उप अध्यक्ष के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पद संभाला था जयपुर में, तब आभास हुआ था उनकी बातों से कि सत्ता जो है वो जहर के बराबर है। इसमें बिल्कुल उनका एक अलग रूप दिखा। ये उनका कहना कि कार्यकर्ता एक, हर एक कार्यकर्ता शेर है, हम सरकार बनाएंगे सभी राज्यों में, कर्नाटक में हम जीतेंगे, ये दो चीजें हैं जो है ये महत्वपूर्ण है और ये खासा एक डिपार्चर है, ये खासा परिवर्तन है उनके पुराने रूप से। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत इस बात के कि वो बात सही कह रहे हैं या गलत, ये तो समय ही बताएगा। 2019 के आते आते ही हम लोग बेहतर ये आकलन लगा सकेंगे। लेकिन चुनौती देने को और विपक्ष के ध्रुवीकरण के केंद्र के रूप में अपने आप को रखने के लिए कांग्रेस इस वक्त तैयार लग रही है।
लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि देश में राजनीतिक स्थिति ऐसी है, कांग्रेस की कहीं मजबूती जमीन पर है या बीजेपी पहले के मुकाबले थोड़ी बहुत कमजोर हुई है?
देखिए, आप उत्तर प्रदेश को अगर बाहर कर दीजिए तो जिसमें 72 सीटें आई हैं बीजेपी की, बाकी सभी राज्यों में जहां वो बिल्कुल धूम से जीत के आए हैं सत्ता में 2014 में, जिनपे उनकी सारी सीटें हैं, 200 सीटें उनकी आई हैं, वो उत्तर भारत से हैं जहां सीधी टक्कर उनकी कांग्रेस पार्टी से है। लिहाजा अगर उनके पूरे इमेज में उनके वो जिस तरह से देखे जा रहे हैं, मापे जा रहे हैं भारत की जनता की तरफ से, उसका सीधा फायदा एक तरह से कांग्रेस को भी होगा। और जो बाकी इलाके हैं, आप पूर्वोत्तर को छोड़ दीजिए, वहाँ बीजेपी पूरे मतलब मेहनत पूरे जोर लगा रही है अपना जीतने का वहां पर सीटें और पूर्वी भारत में, लेकिन उत्तर भारत में ये समस्या तो है कि आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, 5 लोकसभा के उपचुनाव जो हुए हैं जिसमें बीजेपी सत्ता में थी, उनमें से वो सारे हारी है इस वर्ष। मैं सिर्फ 2018 की बात, मैं इन 4 सालों की बात ही नहीं कर रही हूँ। और 2 जो महत्वपूर्ण लोकसभा के चुनाव थे, वहां पे 2 महत्वपूर्ण उपचुनाव ये हारे हैं। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का या कांग्रेस की चाल में जरा सी एक उमंग आना या एक बिजली सी लाजमी है। अब ये किस हद तक ये साबित हो सकता है और किस हद तक वो बीजेपी को उखाड़ सकते हैं, ये तो अब शायद जो हिंदी बेल्ट में अभी जो 4 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं उसी से कुछ जरा ज्यादा अंदाजा मिलेगा।
कर्नाटक का विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, होने ही वाले हैं चुनाव वहां पर बहुत जल्द। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच कैसा मुकाबला देख रही हैं आप?
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिलचस्प टक्कर है कर्नाटक में। कर्नाटक भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत में और खासतौर पर जो फाइनेंस कमीशन, जो वित्तीय आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ जरा सा रक्षात्मक हो गई है। कम से कम 2013 या 14 से बहुत ही आक्रामक अपना उसका राजनीतिक अंदाज रहा है, लेकिन उसको हल्का सा सेटबैक मिला है। कर्नाटक को जीत के वो अपना एक तरह से दोबारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स में टोटल डोमिनेंस या बिल्कुल एक छत्र राज हो, बीजेपी का ही राज हो पूरे देश में, उसको साबित करना चाहेगी। क्योंकि जितने भी क्रिटिक हो बीजेपी के, 23 राज्यों में तो उसकी सरकार है। और कांग्रेस के लिए भी जीतना उन्हीं कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी गिन चुन के 3 ही राज्यों में सरकार इस वक्त बची हुई है। तो कर्नाटक को जीत पाना उसके लिए, उसके मनोबल के लिए बहुत जरूरी होगा। वहां लीडर है उसके पास, वहां वो इश्यूज पे आगे है और वो जम के लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कर्नाटक में जो भी जीतता है वो उसको भुनाएगा। जिस प्रकार गोरखपुर में हार बीजेपी के लिए एक सांकेतिक और उसके मनोबल के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, उसी प्रकार से कर्नाटक में जीत या हार, जो भी जीतता या हारता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिद्धारमैया, मतलब जो एक लोकल लीडर है, वो पूरी तरह से पूरी ताकत उन्होंने लगाई हुई है और राहुल गांधी जिनसे माना जाता है कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके वैसे संबंध शायद बहुत अच्छे नहीं थे, वो उनके खेमे के खास नहीं माने जाते हैं, लेकिन उनको पूरी आजादी दी हुई है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि यही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी होंगे। तो मुकाबला दिलचस्प है।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
श्रोताओं, आपको गुजरात के ऊना की घटना याद होगी। 2 साल पहले ऊना में एक मृत गाय के बहाने कुछ अतिवादियों ने दलितों की बेरहमी से पिटाई की थी। उस घटना के बाद गुजरात में चुनाव से पहले काफ़ी कुछ हुआ, दलित आंदोलित भी हुए और उसकी एक परिणति ऊना के मोटा समढियाला में आज नजर आई है। 350 से ज्यादा दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। ऊना से रॉक्सी गागड़ेकर छारा इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं।
आज यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है और हिंदू धर्म को छोड़ा है। बालू भाई, आप परिवार के मुखिया हैं, क्या है आज की क्या विधि थी, आज क्या किया है आपने?
आज विधि बौद्ध विधि थी इसे कि धर्म परिवर्तन, એટલે કે આ ધર્મ હિન્દુ ધર્મમાંથી અમે બૌદ્ધ ધર્મમાં ગયા છે કે હિન્દુ વિધિથી કોઈ કાર્ય અમે નહીં કરીએ આજથી।
आप ये कह रहे हैं कि आप आपने हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म की ओर आप गए हैं, बुद्ध की ओर आप गए हैं, तो कितने लोगों ने आज यहाँ पर हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म की तरफ गए?
350 लोग फॉर्म भर दी दीदा से।
300 से 350 लोगों ने आज यहाँ पर ये एक शपथ ली दी ली है। उसका कारण क्या था, क्यों किया है ये?
ओ, हिंदू मानता न था ना आ लोग, जो गौरक्षकों होता ये हिंदू मानता ना था।
आप ये कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो दलितों को हिंदू मानते नहीं है, हिंदू धर्म का एक हिस्सा मानते नहीं है।
हाँ हाँ, हिंदू नहीं मानते।
हमारे साथ यहाँ पर देवेन भाई हैं।
अत्याचार के सामने लड़ने वाला पूरे गुजरात में एक ही समुदाय है ज्यादातर लड़ता है, इसलिए दलितों को टारगेट बनाया जा रहा है। हिंदू संस्कृति के अनुसार ये ऊंच नीच का जो भी उसमें लगा हुआ है हिंदू धर्म में, तो उसको छोड़ने के लिए जब तैयार हो रहे हैं, हिंदू विधियों को छोड़ रहे हैं, हिंदू जो भी संस्कृति है वो संस्कृति ऊंच नीच वाली संस्कृति है, असमानता वाली संस्कृति है, तो उसको छोड़ने के लिए अभी लोग तैयार हुए हैं, तो उसको टारगेट बनाया जा रहा है।
मेरे साथ माकड़िया जी है। माकड़िया जी, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे हमारे बीबीसी हिंदी की ऑडियंस को।
मैं डॉक्टर जयंती माकड़िया, प्रेसिडेंट गुजरात दलित संगठन। 1.5 साल से ये तैयारियां चल रही थी। हमारे युवाओं के शरीर पर पहली लाठी गिरी तो वो लाठी पूरे समाज के सम्मान पर पड़ी थी, वो एक शरीर पर नहीं थी। दूसरे युवान के शरीर पर जो लाठी पड़ी थी तो वो लाठी भी उसके हमारे एक मानव होने के आत्मा पर पड़ी हुई है। ये लोग जो मार रहे हैं वो जानवर को बचाने के लिए मानव को मार रहे हैं, तो ये पूरा जो मानव धर्म का विपरीत कार्य हो रहा है। किसी भी धर्म में मानव से ऊपर कोई नहीं है। और बाबा साहब ने कहा था कि धम जो है वो मानव के लिए, मानव जो धम के लिए नहीं है, लेकिन ये लोगों ने सब उल्टा कर दिया है। जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कट्टरवादी लोग कहते हैं, वो धम्म के प्रचार में इतने उधर जाते हैं कि मारने काटने पर आते। इसलिए इस मानववादी धर्म में आज यहाँ 300 से ज़्यादा लोगों ने दीक्षा ली है।
वायरल वीडियो था ऊना का जिसमें वो चार लड़कों को मारा गया था, उनमें से एक लड़के वसराम सरवैया हैं। वसराम सरवैया आज हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध की ओर गए हैं, क्या कारण था, आपको क्यों हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा?
जो 11 जुलाई को हमारे साथ घटना हुई थी, तब गौरक्षकों ने साबित करके दिखाया था कि आप हिंदू नहीं है, आप मुसलमान है, ऐसे बोल रहे थे सब लोग। सरकार भी हमारे साथ अत्याचार करती है।
गुजरात में 350 से अधिक दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। रिपोर्ट थी ऊना से रॉक्सी गागड़ेकर छारा की। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली कांग्रेसी राजनीति के गढ़ माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से पिछले लोकसभा चुनाव में से, आपको ध्यान होगा, 80 में से 73 सीटें जीती थीं, लेकिन अमेठी और रायबरेली दो ऐसी सीटें थीं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। अगले चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के सामने कड़ी चुनौती खड़ी करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो विकास को मुद्दा बना रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि अमेठी और रायबरेली में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है विकास की योजनाएं ठप पड़ गई हैं, ऐसा आरोप है। बहरहाल, यहां विकास की वास्तविक स्थिति क्या है, बता रहे हैं समीरात्मज मिश्र।
राजधानी लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर अमेठी भी हैं और रायबरेली भी। दोनों जिले इसलिए ज्यादा चर्चा में रहते हैं कि यहाँ से लोकसभा में प्रतिनिधित्व अधिकतर उस परिवार का और उन सदस्यों का रहा है जो या तो प्रधानमंत्री बने या फिर कांग्रेस पार्टी में काफी शक्तिशाली भूमिका में थे। पिछले कुछ समय से ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं और पार्टी यहाँ सबसे ज्यादा विकास का मुद्दा उठाती है। बीजेपी का कहना है कि 70 साल में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो ऐसा नहीं है। अमेठी के रहने वाले राजेंद्र शुक्ल बताते हैं,
विकास तो जब तक राजीव गांधी थे तब तक तो यहाँ विकास होता रहा, वो बराबर आते थे, वो तो प्रधानमंत्री के रूप में आते ही नहीं थे अमेठी, वो आते तो घर घर मतलब पहुंच जाते थे। बहुत अच्छा काम हुआ है, स्टेशन बनवाया, हर जगह रोड बन गई, लेकिन जब से ये आ गए तब से, जबकि एक तरह से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सर्वे सर्वाये थे, चाहते तो अमेठी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ उस स्थिति से हुआ नहीं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक अमेठी में जहाँ HAL की इकाई, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स, BHEL प्लांट, इंडियन ऑयल की यूनिट और तमाम शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान हैं, वहीं रायबरेली में भी NTPC, सीमेंट फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, ITI जैसी तमाम इकाइयां और उद्योग हैं जिनसे यहां के लोगों को रोजगार मिला है। जाहिर है ये सब पिछली कांग्रेस सरकारों के समय में हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों की ये शिकायत भी है कि अब उनके इलाके को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।
BJP वाले जब से आए हैं, मुख्यमंत्री जी सब से आए हैं, तब से यहाँ की सारी योजनाओं को खत्म कर दी जा रही है।
किसानों की जमीन गई है गन फैक्ट्री कॉलोनी में, तो उसका मुआवजा योग्य नहीं दिया गया है, और नौकरी का आश्वासन दिए थे वो नहीं दे रहे हैं।
अमेठी मेगा फूड पार्क और हमारे डिस्कवरी पार्क, ये सब कांग्रेस की देन थी।
1.5 सालों से राहुल गांधी जी की निधि जो है इनके खाते में नहीं भेजी गई है। 450 करोड़ रुपए का काम लंबित है।
कई फैक्ट्रियां लगी, अस्पताल बना और कई कई चीजें, लेकिन कई चीज ऐसे बनी थी कि जो मैंने यहाँ से उठा भी दी गई जब से BJP आई।
स्थानीय लोगों के मुताबिक UPA सरकार की कई योजनाओं को मौजूदा सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। इस संदर्भ में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना और रायबरेली में पिछली UPA सरकार में स्थापित एम्स का उदाहरण खास तौर पर दिया जाता है, जहां अस्पताल का निर्माण हो जाने के बावजूद उसे शुरू नहीं किया गया है। रायबरेली के पत्रकार माधव सिंह कहते हैं,
आज जो हाईवे दिख रहा है या अन्य और भी प्रोजेक्ट है वो कांग्रेस की ही देन है। हाईवे का एक पहला प्रोजेक्ट है कि हाईवे से यहाँ से लखनऊ का जो सिस्टम है वो चालू हो गया, पानी को लेकर भी अब धीरे धीरे वो चल रहा है, इनके प्रोजेक्ट आए हैं। रेल कोच का एक बनाया गया यहाँ पर हाल ही में, भले यहाँ के अभी कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिला है मगर धीरे धीरे मिलता जा रहा है। रेल पहिया बना, महिला विश्वविद्यालय की बात भी चल रही है। लोगों को यहाँ पर भेदभाव का सामना करना पड़ा जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, यहाँ के लोगों का कहना है खुद।
लेकिन BJP नेता दयाशंकर पांडे कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली के संदर्भ में ऐसे आरोप गलत लगाए जाते हैं।
बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं, फूड पार्क का कोई अस्तित्व नहीं था, पेपर मिल का कोई अस्तित्व नहीं था। राहुल गांधी बिल्कुल झूठ का पहाड़ उड़ाते हैं। 10 साल उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 10 सालों फूड पार्क कोई नहीं बनवा पाए, पेपर मिल नहीं लगवा पाए, तो क्या वो जब सरकार बदल गई तब जो है वो उसका आरोप लगाते हैं।
हालांकि पांडे खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि इससे पहले विकास के कार्य यहाँ जरूर हुए हैं। अमेठी और रायबरेली में सड़कों का जाल पहले से ही बिछा हुआ है। यह अलग बात है कि अब बहुत सी ऐसी सड़कें मिलेंगी जिनमें बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन पर चलने लायक नहीं है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसके लिए यहाँ के सांसदों की बजाय राज्य सरकारें दोषी हैं, और राज्य में पिछले करीब 3 दशक से कांग्रेस पार्टी सरकार से बाहर है। समीर आत्मज मिश्र, BBC रायबरेली।
और इस रिपोर्ट के बाद खेल समाचारों के लिए आदेश कुमार गुप्त मुस्कुरा रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं स्टूडियो में।
जी संदीप, अगर IPL की बात की जाए तो थोड़ी देर बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स बेंगलोर में आपके सामने होंगे, जहां से समाचार ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले आज जो पहला मुकाबला समाप्त हुआ उसमें सनराइजर्स हैदराबाद में जयपुर में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत के लिए 152 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो अजिंक्य रहाणे जो कि टीम के कप्तान हैं उनके नाबाद 65 और संजू सैमसन के 40 रनों के बावजूद केवल 140 रन ही बना सके निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर। सनराइजर्स हैदराबाद के सिद्धार्थ कौल ने 23 रन देकर 2 विकेट लिए। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 151 रन बनाए। कप्तान केन विलियमसन ने 63 और एलेक्स हेल्स ने 45 रन बनाया। उधर टेनिस के कोर्ट पर भारत के प्रजनेश गुणेश्वरन ने इनिंग में समाप्त हुए कुनमिंग ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खिताबी जीत हासिल की। उन्होंने फाइनल में मिश्र के मोहम्मद सफात को 5-7, 6-1, 6-3 से हराया।
आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचार सुनने के बाद रजनीश कुमार से चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
BBC समाचार। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया अगले महीने अपना प्रमुख परमाणु परीक्षण ठिकाना बंद कर देगा। अपने पहले मध्य पूर्व दौरे पर पहुंचे अमेरिका के नए विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ईरान की कड़ी निंदा की है। बीबीसी समाचार
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अनंत प्रकाश ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक bbchindi.com है आपके साथ। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।